संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में हे वर्धमान महान जिन विचरे हमारी ध्यान। कल अपन ने कहा था कि अनुभव दो प्रकार का होता है। एक तो वो जब आत्मा का उपयोग पूर्णतः आत्मसन्मुख होता है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों का प्रणमन आत्मोन्मुख होता है, तब जिसे हम अनुभव कहते हैं, जो अनंत गुणों की पर्याय है, उसमें आनंद गुण भी शामिल रहता है, पर वो अनुभव अंतर मुहूर्त तक लगातार हो गए तो जिससे केवल ज्ञान हो जाता है, वो साक्षात अनुभव है। ये बात तो अपन सब मानते ही हैं, जानते ही हैं। अब दूसरा भी एक अनुभव है, उसे भी अनुभव कहते हैं। शास्त्रों में भी, गुरुदेव की वाणी में भी, तुर्दमल जी के मुख समार प्रकाशक रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी, सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन जब हुआ तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जो अनुभव हुआ था ना, तो उसमें ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, गुणभेद से भिन्न, ये मैं हूं ऐसी जो प्रतीति पैदा हो गई थी, उसका नाम है सम्यक दर्शन। और उस समय जो उसने आत्मा को जाना था, वो आत्मा जो दृष्टि का विषय भूत जिसे भी बताया, ये मैं हूं ऐसा जानना, अकेला जानना नहीं, उसके साथ ये जानना कि ये मैं हूं, वो सम्यक ज्ञान है। और उसमें जो अनंतानुबंधी के सार का अभाव होकर जो स्थिरता पैदा हुई है, उपयोग वो स्थिरता जो ध्यान के काल में होती है, समय के काल में वो नहीं, आत्मा में सदा रहने वाली स्थिरता पैदा हो गई हुई है, उसे परिणति बोलते हैं। वो तीन चीजें हो गई, ऐसे आनंद गुण में तीन दी आनंद की कणिका जगी है, ऐसे अनंत गुणों की मैं जो जो परिवर्तन हुआ है वो होकर के जो आत्मानुभूति हुई है, अब वो उपयोग बाहर आ गया। तो उस काल में भी अनुभव कायम है ऐसा एक कह रहे हैं। अब अंदर अनुभव चला गया, फिर विषय के साय में भी उपयोग जा सकता है, युद्ध में भी जा सकता है, शास्त्र के अध्ययन मनन पठन पाठन में भी जा सकता है, क्योंकि ये अनुभूति चौथे गुण स्थान में हो जाती है। यदि छठवें ही सातवें में होती होती तो हम कहेंगे वो अनुमित महाविद के शुभोपयोग में जा सकती है, या शास्त्र लिखने के शुभोपयोग में जा सकती है, ये कहते। लेकिन वो तो अभी चौथे गुण स्थान में चक्रवर्ती को भी या युद्ध में भी जा सकती है, और पांच इंद्रिय के विषयों में भी जा सकती है, और स्वभाव में भी जा सकती है। वैसे तो आज सुबह के व्याख्यान में ये बहुत गहराई से सिद्ध किया गया था कि मोहिनी कर्म जब पाप है तो उसके उदय में होने वाला कोई भी भाव पुण्य कैसे हो सकता है। इसलिए जो उसमें लिखा है कि पाप तत्व को पाप तो कहते हैं सब लोग, और पुण्य तत्व का भी पाप है कहते बिरले लोग, है ना, उसमें परमात्म प्रकाश में योगसार में, क्योंकि वो जो मोहिनी कर्म के उदय से जो चीज पैदा हुई है। और अभी अभी गुरुदेव कह रहे थे एक मिनट पहले ही कि सम्यक दर्शन बंद का कारण नहीं हो सकता। हम सोलह कारण भावना में पहली भावना को सम्यक दर्शन समझते हैं, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वृत्ति सुंदर विचार ये सब आती है ना, लेकिन वास्तव में जो क्लियर तो लिखा है सम्यक दर्शन विशुद्धि, माने सम्यक दर्शन के साथ होने वाला विशुद्ध परिणाम। विशुद्ध माने शुद्ध नहीं होता है, पूर्णमल जी ने लिखा है परिणाम तीन प्रकार के होते हैं, शुद्ध विशुद्ध और संकलेश, ठीक है ना, संकलेश विशुद्ध और शुद्ध, तो माने विशुद्ध ये शुभ भाव को बोलते हैं, कहते हैं बहुत विशेष अच्छा शुद्ध हो जाए विशुद्ध है। तो वो ये कहते हैं कि वो दर्शन के साथ जो विशुद्धि है वो तीर्थंकर प्रकृति के बनने का कारण है। एक बात तो नक्की और पक्की है, समझ लो आप, कि जो जो 16 कारण भावनाएं भाएंगे उनको तीर्थंकर प्रकृति बन जाएगी, इस धोखे में मत रहना। बहुत से लोग बहुत रस ले लेकर के 16 कारण पूजन करते हैं, वो उसी को 16 कारण भावना समझते हैं। अब समझते बस मैं तो बंधी है, मेरे को अब बंधी बंधी बात, वो तो 16 कारण भावों की पूजन है। क्यों? वास्तव में वो 16 कारण भावनाओं की पूजन भी नहीं है। अब आज कल से शुरू हो जाएगी ना, महीना भर तक चलेगी, और रत्नात्रा पूजन वो पंचमी से शुरू होगी, 10 दिन चलेगी, तो उससे त्रिगुणी महान हो गई ना। इसके लिए हमने 30 दिन दिए और उसके लिए 10 ही दिन दिए, दक्ष लक्षण को भी 10 दिन दिए धर्म को, और रत्नत्र को 3 दिन, 13-14 और पूर्णिमा बस। तो अपन कृपा कर देते हैं, कर लेते हैं, अलग चढ़ा देते हैं, उन्हें पूजा कर लेते हैं उनकी, लेकिन हैं तो वे 3 ही दिन, कि उपवास उपवास तो 3 ही दिन के करने पड़ेंगे। क्यों? 10 लक्षण के 10 दिन और 16 कारण के 30 दिन। 16 कारण भावनाएं पूजने लायक हैं ही नहीं। घबराना नहीं, एक 16 कारण पूजन का विरोध कर रहे हैं। 16 कारण पूजन में ये तो पुण्य बंध की कारण है, जो बंध की कारण हो उनकी पूजा हो सकती है दर्शन में, या मोक्ष के कारण की पूजन होगी? बोलो, होनी चाहिए ना। तो ये 16 कारण पूजा हम जो करते हैं, ये वो 16 कारण भावनाओं की पूजन है ही नहीं। तो किन की पूजन है? तो उसमें लिखा है, साफ पढ़ो क्या 16 कारण भावन भाए, एक वो आता है ना, नहीं नहीं एक वो आता है अंत में आता है, शुरू में आता है, दर्श दिशोद भावना भाए सोलह, जय जय नाथ परम गुरु। तो ये परम गुरु की पूजन है, जय जय नाथ परम गुरु हो। और परम गुरु किसे बोलते हैं? आनंद भगवान को। परम गुरु परंपरा गुरु आता है ना सर, तो परम गुरु बोलते हैं आनंद भगवान को। तो वो क्या कह रहे कि दरअसल शुद्ध आदि भावनाएं भाकर तीर्थंकर पद पाकर, देखो ये सब में एक तो प्रत्यय लग रहा है, एक तो प्रत्यय समझते हैं तुम, अपने विद्यार्थी समझते हैं कि नहीं, जो बात के खत्म नहीं हुआ, मैंने करके 16 कारण भावन भाए, भाए माने भाता है नहीं, भाकर अभी बात पूरी नहीं हुई, फिर तीर्थंकर पद पाए, तीर्थंकर पद पाकर बात पूरी नहीं हुई, परम गुरु होए, परम गुरु होकर जय जय नाथ परम वो भगवान, उन तीर्थंकर अरहंतों की पूजन है। रे ये 16 कारण को नहीं हम अलग चढ़ा रहे, किनको चढ़ा रहे? तीर्थंकर अरहंतों को, और जो उन्होंने पूरा अपने अचरी में लिख दी, और आप 8-8 दफे बोलते हो, और आज तक माने जा रहे हो कि 16 कारण की पूजन होती है। जब मैं यहां जयपुर में आया था 45 साल पहले, तो मैंने एक महीना तक 16 कारण भावनाओं पर प्रवचन किए थे, अब उस वक्त ज्यादा टेप मेप की ऐसी व्यवस्था थी नहीं, तो शायद अभी उपलब्ध नहीं होंगे वो, एक महीने तक किए थे, यानी उसमें एक महीने तक करें इतना माल है मेरे पास उसके बारे में बोलने को। क्या? लेकिन लोगों की सुनने की क्षमता नहीं है। क्यों? आज तक अभी उस वक्त के श्रोता बैठे हैं कुछ, देखो ये सामने एक भाई बैठे, एक वो बहन बैठी, क्यों शशि प्रभा 45 साल पहले सुने थे ना, ऐसे श्रोता अभी बैठे, वो पीछे एक बहन बैठी मुन्ना लाल जी की लड़की, क्या नाम विमला बहन, ये मेरे 45 वर्ष पुराने श्रोता हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्या लिखा है, दर्शन शुद्ध भावना भाए, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होए तो जय जय नाथ। ये नाथ तो पुलिंग है कि स्त्रीलिंग, और 16 कारण भावनाएं पुलिंग है क्या स्त्रीलिंग, ये तो नाथ की पूजन है, ये नाथनी की पूजन क्या है, आप समझ आए ना, इसमें क्लियर लिखा गया नहीं है, भावना तो स्त्रीलिंग है, और फिर जय जय नाथ परम गुरु होए उनकी पूजन है। और अब मैं थोड़ी सी कितना चिट्ठा और बताऊं, थोड़ा नमूने के तौर पर 15 मिनट लगेंगे, हुए तैयार क्या? इस 16 कारण भावना में मैंने कहा ना कि भाएंगे तो तीर्थंकर पद मिल जाएंगे, धोखे में मत रहना। तो फिर क्यों लिखी तत्वा सूत्र में, इसलिए लिखी कि जिन लोगों को तीर्थंकर दिग्धि बंधनी है अथवा बंधी है, उनके उसके पहले 16 कारण भावनाएं भाई गई थी उनके द्वारा, और अभी भविष्य में जिनको बंधना है उनको भाई जाएंगी, और वो तीर्थंकर प्रीति के बंध का निमित्त बनेंगी, समझिए ना, उनको जिनको नक्की है तीर्थंकर होना, ऐसा नहीं कि हरेक को जो करेगा उसे, ऐसा नहीं है। यदि आपके भाग्य में तीर्थंकर होना नहीं है तो आपको नहीं होगी वो, तो आपको जितने दिखती नहीं बनेगी, नहीं बनेगी और नहीं बनेगी। तो समझ लो तो कितना लिमिटेड है, एक कोड़ा कोड़ी सागर में 24 होते, एक कोड़ा कोड़ी सागर में क्यों 10 कोड़ा कोड़ी सागर में, क्योंकि शुरू से तार होते नहीं ना, 10 कोड़ा कोड़ी सागर में 24 होना है, कितने 24 आदमियों को बनोगे, तुम्हारा नंबर आ जाएगा उसमें, तो हम कल से बंद कर देंगे। इस धोखे में करते हो तो कल नहीं अभी बंद कर दो, कुछ किसी का बिगड़ने वाला नहीं है। तो अब देखो क्या है किसी के बंद का कारण, जयमाला पढ़ो थोड़ा, दरअसल शुद्ध भावना भाए, दरअसल शुद्ध धरे जो कोई, उसका संसार में आवागमन नहीं होगा, ये लिखा है। तीर्थंकर प्रकृति बनेगी, ये कहां लिखा, क्या समझ में आ रहा है ना, फल बता रहे ना, जो ऐसा करेगा उसको ए मिलेगा, जो ऐसा करेगा उसको ए, पूरी जयमाल में ऐसा है, हर एक भावना का फल बताया है, फायदा है ना। तो तीर्थंकर प्रकृति बनना तो नहीं बताया, दरअसल शुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई, और विनय महाधारे जो प्राणी, और शिव बनता की सखी बखानी, और जो विनय को धारण करेगा तो वह विनय मुक्ति रूपी पत्नी की सखी है। बस ये लिखा, क्या है वो, किसने प्रकृति बनेगी नहीं लिखी, मुक्ति रूपी पत्नी की सखी है, क्या है क्या, इन कवियों को हो क्या कि हर जगह पत्नी हर जगह सखी, वो इस उदाहरण के माध्यम से कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, राजाओं की रानियां हुआ करती थीं, और एक एक राजा की सैकड़ों रानियां होती थी, ये तो आप जानते ही हैं। हर रानी रोजाना पूरी तैयार होकर के अपने शयन कक्ष में बैठती थी कि राजा साहब शायद मेरे यहां आ जाएं आज, समझे ना, और जहां पहुंच गए वो पहुंच गए, और वे अपनी सखियों को इस काम के लिए लगा रखती थी कि तुम मौका लगे तो राजा साहब को प्रयत्न करके हमारे पास आना, क्या उनको ये ट्रेनिंग थी कि तुम बस जब वो राजकाज से निपट गए और सब घर की तरफ आवे तो तुम जरा स्वागत में खड़ी रहना, चलो साहब पधारो पधारो पधारो, ऐसा करके और किसी भी तरकीब से तुम हमारे पास लाना, समझे ना। अब वो सखी का काम ये था, तो वो कहते हैं कि ये मुक्ति रूपी जो सखी है, पत्नी है, उसकी सखी है। अब सखी का काम क्या है कि वो मुक्ति रूपी पत्नी से उसके पति को मिलाना, यही काम है ना। तो अब वो जहां से लाए, लेकिन वो लाना में वो सहयोगी है, लेकिन कहां तक, दरवाजे तक, शयन कक्ष के की देहरी तक, देहरी समझते ना, उसके आगे नहीं। क्यों कि वो जो वहां तक लाने में सहयोगी बनी, यदि वो शयन कक्ष में साथ में आ गई और जमी रही, तो जिस मिलाप के लिए वो लाई है वो मिलाप संभव नहीं होगा, वो सखी जो साधक थी वो बाधक हो जाएगी। ख्याल में आ गई ना ये बात वो बताना चाहते हैं क्या कि विनय बहुत अच्छी चीज है, समझे सुनना, लेकिन यदि तुम अपनी भगवान आत्मा से मिल रहे हो और तुम्हारे गुरु भी आ जाएं और गुरु के गुरु भी आ जाएं, तीर्थंकर परमात्मा भी आ जाएं, तो तुम उधर उनकी विनय के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो वो वहां मिलन नहीं होगा। वो तो कहां तक मिलन है बोलिए, विनय कहां तक है। अपने गुरु की विनय करना बहुत जरूरी है, लेकिन सामायिक में बैठे हो, आत्मा का ध्यान कर रहे हो और गुरु जी आ जाए और तुम छोड़ छाड़ के उठ के खड़े हो जाओ, गुरु जी पसंद करेंगे। यदि तुम पूजा कर रहे हो भगवान की और गुरु जी आ जाए तो खड़े होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। सामायिक कर रहे हो तो क्या करोगे, परीक्षा दे रहे हॉल में, गुरु जी निरीक्षक हैं, वो खड़े खड़े चक्कर काट रहे, तो खड़े ही रहोगे, तुम बैठ के परीक्षा लिखोगे कि गुरु जी पास में आएंगे तब तो खड़ा होना पड़ेगा ना, नहीं। तो ये जो विनय संपन्नता नाम की भावना है, उसका काम सिर्फ देहरी तक है, वो मोक्ष में नहीं पहुंचाएगी, वो दरवाजे तक ले जाएगी सिर्फ। वो विनय करोगे गुरु की तो गुरु तुम्हें तत्व समझा देंगे, जिनमानी की विनय करोगे तो वो भी तुम्हें तत्व समझाने में निमित्त बन जाएगी कि भाई गुरु तो चेतन है वे बन जाएंगे, और जिनमानी कैसे बन जाएगी। अरे भैया जब तुम विनय करोगे माने वो संभाल के रखोगे तो तुम्हारे पास 24 घंटा मौजूद है, पढ़ोगे तो हो जाएगा काम, समझ में आए ना। पढ़ो आप विनय महाधार ये पूजन मैंने तो नहीं लिखी है ना, लेकिन ये अर्थ मैंने आपको जो बताया इसके अलावा वही अर्थ सूझता हो तो माथा मारना और फिर मुझसे पूछना, बताना मुझे कि मैं भी वो अर्थ करने लग जाऊंगा। शील महाव्रत क्या लिखा है जी, देखो तो तुम शील जानते हो, सप्त शील व्रत, देखो मेरे देश व्रत अनर्थ व्रत आता है ना, अनुमित उनमित, ये शील व्रत कहलाते हैं सात। इसका जो पालन करेगा वो औरों की आपदा टालेगा, तुम्हारा उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। पूजा में लिखा है, देखा क्या लिखा, शील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन की आपदा टाले। क्या मतलब कि हमने अहिंसा व्रत का पालन किया और चार हाथ जमीन आगे देख देख के चला, तो किसकी आफत टली, जो बेचारे जीव थे तुम्हारे पैर के आगे मर जाते उनकी आफत टली ना। तुमने सत्य बोला, झूठ नहीं बोला, तो झूठ तुम्हारे झूठ के कारण जो चक्कर में पड़ जाते अब वो उनकी आपदा टल गई। तुमने चोरी नहीं करी तो जिसके घर में करते उस पर आफत आती ना, तो उनकी आफत टल गई। तो कितनी क्लियर बात है।
तुम ने स्वपत्नी व्रत ले लिया और किसी माँ बहन आदि वेश्यादि के बुरी नगाह रखने का संकल्प किया तो बेचारी माताएं बहनें सुरक्षित होगी, उनकी आफत टली, तुम्हारी क्या की आफत है ना। ऐसे तुम्हें परिग्रह थोड़ा सीमित रखा तो जो दूसरों को मिल जाती वो भोग सामग्री, क्यों वो उन्हें मिल गई, उनको भोग सामग्री के अभाव की आफत टली, क्यों तुमने दिग्व्रत ले लिया तो दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर जाते तो जिन जिन लोगों को तुमसे तकलीफ होती उनकी आफत चली, समझ गया। लगाते जाओ देशव्रत दिग्व्रत देशव्रत अनर्थ दंड व्रत लगाते जाओ आगे सब। क्या लिखा, शील सदा दृढ़ जो नर पाले, तो बस सील बना के लिए वो ब्रह्मचर्य को सील समझते हैं। पांच सात सील होते हैं तत्वासी में पढ़ो सब सील है ना, ये अणुवृत में और गुणवृत है ना, ये सब सील कहलाते हैं। और आगे क्या है बोलो, बस अज्ञान का अभ्यास करेंगे तो मुंह महात्म नष्ट हो जाएगा, मिथ्याप तो नष्ट हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। ये तीसंगे प्रीति बनने की कोई बात ही नहीं कर रहे। अब किसी को वो मुहे अज्ञान तो नष्ट करने ही नहीं है, बस तीसंग प्रीति बन जा, तीसंग प्रीति बन जा, ये कोई कम बढ़िया फल है क्या है? संसार में आवागमन नहीं होना, क्यों मुहे का नाश होना, ये इतना इतना बढ़िया फल है, उस तीसंग प्रकृति से कई गुना अच्छा फल है ना, लेकिन उसको तो उसकी लता लग रही। और बोलो जल बोल दे राम, अब देख रहे हो, अब देख सुरग में चला जाएगा। देखो अभी सब पढ़ लेना पूरी, अब कहां लिखा है उनने कि तीर्थंकर बनेगा, तो अंत में लिखा बत्सल अंग सदा जो जावे, ये लिखा अगले बात्सल्य भावना को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण कहा। और बातें बहुत है आगे देखो, जो अरहंत भगति मन आने, अरहंत की भक्ति करोगे तो विषय के साथ से बच जाओगे, क्यों नहीं बचे तो, अरे तो क्या उसी समय तुम जब भक्ति करोगे अरहंत भगवान की उसमें विषय के साथ का सेवन करोगे, नहीं करेंगे तो बच गए ना। जो आचार आ गया तुम्हारा आचरण पवित्र हो जाएगा, आचार्य की भक्ति करोगे तो, क्योंकि गड़बड़ होगी तो टोकेंगे वे, भैया जरा गड़बड़ मत करे। बहु सुरत बंत अब बहुसुरत बंत का मतलब होता है सुरत केवली, तो सुरत केवली की भक्ति करोगे तो तुम सुरत केवली बन जाओगे, लिखा ना। तो सोनर संपूर्ण सुरत नर ही, ये संपूर्ण सुत का जानकार हो जाएगा, लिखा क्या नहीं लिखा क्लियर। और भी देख लेना ऐसी, अंत में लिखा कि दर्शन विशुद्धि तो क्यों लिखी, सुनो सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर प्रकृति बंधती नहीं है, पहले गुणस्थान में दूसरे गुणस्थान में तीसरे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति बंधती नहीं है, चौथे से बंधना शुरू होती है, इसलिए सिर्फ उसका नाम लिख दिया। लेकिन सम्यक तंचय और तीर्थंकर प्रकृति में आता नहीं, समझ गए ना, उससे बंद नहीं होगा सम्यक दर्शन से, लेकिन उसकी उपस्थिति जरूरी है, एक तो वो बात है। और अंतिम जो बत्सल अंग, बत्सल अंग का मतलब क्या है, कि ये जो तत्व मुझे प्राप्त हुआ है, कौन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का, जिसके आशय से सम्मत ज्ञान चारित्र होता है,
ये तत्व सारे जगत को प्राप्त हो जाए, ये सारे जगत से वात्सल्य है, किसी एक दो को नहीं, सब जैनियों को नहीं, क्या दिगंबरों को नहीं, मोक्षुओं को नहीं, सारे लोक में जो जीव हैं सबको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, मेरा बस चले और मेरे से इसमें कुछ हो सकता हो तो मैं अवश्य करूंगा, ऐसा जो तीव्र वात्सल्य भाव हुआ तो उससे तीर्थंकर विधि बनी। तो उससे क्या मिला कि उनको ऐसी वाणी मिली कि सब अपनी अपनी भाषा में समझ लें, क्योंकि भाषाएं तो लाखों, अब ऐसी वाणी किसको मिलती है, हमारे पास एक भाषा है, गुजराती में बोलेंगे तो गुजरातियों को समझा पाएंगे, हिंदी में बोलेंगे तो हिंदियों को समझा पाएंगे, ठीक है। उनको सबको समझाना था, कब कब, जब वो चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान के आठवें भाग तक, आठवें के सातवें भाग तक जो भी है, आठवें गुणस्थान में भी पूरी नहीं, तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधी प्रकृति है। निरंतर बंधी जानते हैं कि जब से वो बंधना शुरू हो, नहीं है जो वो चौथे से लेकर आठवें गुणस्थान तक बनती है, तो वहां पर जो वात्सल्य भाव हुआ वो सब वहां पर आठवें गुणस्थान में अरहंत भक्ति कहां होगी, वो तो अपन मान लेंगे जो निश्चय भक्ति में सबकी भक्ति हो गई, समझे ना। तो वो सारे जगत तक मेरी बात पहुंचे इस भावना की वजह से तीर्थंकर विगति बनती है, और इसलिए उनको ऐसे संयोग मिलते हैं, समोषण की रचना दिव्यधुनि ऐसी खिलना जो अधिकतम लोगों तक पहुंच जाए। तो दो ही चीजें आवश्यक हैं, अब पैसे पर उसमें सब समा जाएंगी, अपन कहते हैं ना हाथी के पैर में सब समाते हैं, जैसे कि अच्छे आवश्यक मुनियों के लिए आवश्यक हैं, लेकिन वो बाहुबली ध्यान में खड़े रहे तो उन्हें छह आवश्यक नहीं पाले पालने वाले का अपराध किया कि नहीं किया, कहते वो सामायिक में सारे आवश्यक अपने आप समा गए। ऐसा मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस बात से जो गुरुदेव ने कही कि समय दर्शन बंद का कारण नहीं है, न तीर्थंकर की प्रकृति है न किसी का, कि हमारे मुंह में जो पानी भरता है कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं, एक तो वो बात अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है कि ऐसी चाहने वाले को तीर्थंकर की प्रकृति नहीं बनती, क्यों बनना है तेरे को, मोक्ष में जाना है ना, तू मुमुक्षु है क्या तीर्थंकर इच्छु है क्या, तो मोक्ष में जाने की बात करना, आएगी बीच में तो आ जाएगी और नहीं आएगी तो नहीं आएगी, हमें तीर्थंकर से क्या, कैसा पंडित जी आप समझते तो होने की बता दे कि वैसे ही मोक्ष चला गया तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। सुनेंगे जो 5.5 करोड़ मुनि गए, कोई नाम लेने वाला नहीं मिला, कौन नाम तो बताओ, कौन 5.5 करोड़, एक आध दो के बता सकते हो ना, शिकर्जन जी मत बताना नहीं फंस जाओगे, कि वो नंग अनंग है ना, नंग अनंग आदि मुनि आता कह रहे, अरे नंग अनंग मुनि ये नाम नहीं है प्रदीप जी, तो क्या है कि अनंग माने कामदेव के समान सुंदर, नंग माने नग्न दिगंबर, 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए, क्या क्या समझ में आया, नंगा नंग माने समझ, नंग माने नग्न दिगंबर और अनंग माने कामदेव के समान सुंदर, कोई नाम लेवा नहीं मिलेगा, कम से कम तीर्थंकर होके जाएंगे तो हमारी पूजा तो होगी गांव गांव में जगह जगह में, यदि महावीर ऐसे ही मुक्त चले गए होते तो उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं मिलता, अभी तो 800 रुपये मिलते हैं या कहना चले क्यों, तो तेरे को पूजने का भाव जाना है कि मोक्ष में जाना है, मेरा मतलब समझिए ना, क्या क्या
मैं तो कई दफे सुना चुका, सोनागिर में भी सुना चुका, अब आज आपने सुना, समझ में आई ना। तो अपनी बात क्या चल रही है कि वो सारे जगत तक मेरी बात पहुंचे, ये भावना है ना, गुरुदेव की भावना थी कि सब आदमी समझे, जो आदमी आए वो समझे। तो हमको लगता है कि सारे उसी संगत की थी माने, देखो तो केबली के बाद पान मूल में बनती है, समझ गई ना। लेकिन ऐसी तीव्रतम भावना कि जो तत्व ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वो तत्व ज्ञान अधिकतम जीवों तक पहुंचे, ये तीर्थंकर द्विवेदी के बंदगी कारण है। देखो मैं बहुत ही अंदर से गदगद होकर ये बात कहता हूं और कहना चाहता हूं कि गुरुदेव श्री का की तत्व ज्ञान यदि आगे बढ़ेगा तो जो उनके तत्व ज्ञान का गहरा अध्ययन करेंगे और न केवल करेंगे तो उन्हें आत्मलाभ बहुत बढ़िया होगा, वो सबसे बड़ा लाभ है। लेकिन वो तत्व ज्ञान करके फिर उसे जगत के सामने परोसेंगे, चाहे पाठशाला में पढ़ाकर, चाहे प्रवचन करके, चाहे सास सभा करके, चाहे लिख कर, ख्याल में आई ना, वो उनके माध्यम से ही ये तत्व ज्ञान जिंदा रहेगा और आगे बढ़ेगा। और कोई उपाय नहीं है, एकमात्र उपाय है। और इसलिए ऐसा मेरे दृढ़ आस्था होने से मैंने अपने जीवन को पूरी तरह उसी काम करने के लिए समर्पित कर दिया है। क्या उसी काम को समर्पित करने के लिए कर दिया है। कल एक भाई ने मेरे से कहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको यदि और ज्यादा साधन मिल जाए, और कोई आदमी कहे हम इतने विद्यार्थी और देते हैं तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा बड़ा देंगे विद्यार्थी, हम कहेंगे कहां से, गांव गांव में जाएंगे और पकड़ पकड़ के लाएंगे, बड़ा देंगे। कि रखोगे कहां। मैंने कहा हमारा घर बहुत बड़ा है, हम अपने घर में रखेंगे। उनको जवाब दिया, यहां बैठे हैं वे, कि हम अपने घर में रखेंगे। हमने जो हमारे यहां कमरे दिए थे ना, जिन लोगों ने कुछ पैसा दिया था बनवाने में और उनके लिए रिजर्व किए थे, हमारे बबलू जी और पीयूष जी गांव गांव में जाकर उनसे भी कमरे वापस लाए हैं कि चाबी हमें दो, हम विद्यार्थियों को रखेंगे। आप जब आएंगे आपको जो व्यवस्था आपकी है उससे बढ़िया व्यवस्था हम आपकी करेंगे, नहीं होगी तो होटल में ठहराएंगे, दो दिन तो ठहराना है, तुम्हें फुर्सत कहां है, उनमें से कमरे लेंगे, किराए से कमरे लेंगे, तुम मत सोचो, व्यवस्था बनेगी तो बनाएंगे ऊपर। एक कोरी कहने की बातें हैं, आप अपने घर में रखोगे, अरे हमने अपने घर में रखकर कम से कम 8-10 को पढ़ाया है, क्या दादा कि भाई तो तुम्हारे बाल बच्चे ही थे, पोते पोतियां थी, अरे कोई नहीं, रखा तो है, पढ़ाया तो है, अब वे नहीं है तो हमें तो रखना है किसी न किसी को, हमारा घर तो खुला रहे। जितने अधिक तक, मैंने तो घोषणा कर दी थी कि जितने भर्ती कर सको करो, आए उतने हम क्या करें। तो वहां से अमेरिका गया कि दादा बहुत बड़ा संकट आ गया है, कॉलेज ने 6,000 रुपया बढ़ा दिए एक एक विद्यार्थी पे, और जो 34,000-35,000 में साल में निपट जाते थे अब वो 40 के ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। क्या करें, कितने भर्ती करें, क्या पूछ रहे, क्या कहा, होगा, करेंगे, कहीं से जो भी व्यवस्था होगी करेंगे, तुम तो सबको भर्ती कर दो, एक को भी नहीं रहने देना, क्या, अरे जितने बन जाए बनेंगे तो सब अपने अपने भाग्य से उनकी क्रमबद्ध पर्याय से। लेकिन गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान बहुत गहराई से उनके अंदर पहुंच जाए अधिकतम लोगों की, क्या समझ रहे ना, वही उसमें ही अपने जीवन की सार्थकता है। और अपना 24 घंटा उपयोग, मैं तो अपना स्पीकर 24 घंटा खुला रखता हूं, सुबह 5 बजे से गुरुदेव का टेप होता है ना, और मुझे घूमने का समय होता है तो यहां सामने घूमता हूं, बाहर नहीं जाता यहां, क्यों, गुरुदेव का प्रति मैं सुनता हूं, इन बच्चों का सुनता हूं, जो भी करता है उसका सुनता हूं, बंद नहीं करता। जब आपका फोन आ जाए कदाचित और मुझे बंद करना पड़े तो मैं ही बाहर भाग जाता हूं, स्पीकर को हाथ नहीं लगाता। आभीषण ज्ञानोपयोग ही एक मार्ग है, कौन सा, क्या नाम है शास्त्र में, आभीषण ज्ञानोपयोग क्या चीज है आप जानते हैं, निरंतर ज्ञान का अंदर में रखना। देखो मैं बिल्कुल डंके की चोट कहता हूं, एक जैन दर्शन में एकमात्र ज्ञान मार्ग है, बस खत्म। भक्ति मार्ग जैन दर्शन में नहीं है, कोई भक्ति मार्ग से मुक्त चला जाएगा, कोई ज्ञान मार्ग से मुक्त चला जाएगा, और जहां लिखा होगा भक्ति से मुक्ति, वो समझ लेना वो कौन सी भक्ति है, गुण भेद से रहे पर्याय भेद से आत्मा की लीनता, उसका नाम भक्ति है। जो जिस भक्ति को तुम भक्ति भक्ति कहते हो तो कुछ है ही नहीं, मैं उसे भक्ति भक्ति नहीं समझता हूं। कुंद कुंद ने क्या लिखा है, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है। चुप, आगे मत बोलना। क्या लिखा है, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की, मोक्ष में जो जीव चले गए ऐसे मनुष्यों की, ओनली सिद्धों की। क्या लिखा, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की, कुंद कुंद की गाथा का पद्यानुवाद है और मैंने कुंद कुंद शतक में रखी है। क्या, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे कैसे गुण भेद से, कि एक आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा करके भेद करके भक्ति करे, उसको आगम में परम भक्ति कहा है। क्यों, ये कौन सी भक्ति होगी भैया, निश्चय के व्यवहार, जानने वाले नहीं बोलना, क्यों कौन सी होगी, अरे वो तो बिल्कुल ही निश्चय होगी, अरे लगा पढ़ो अपर पढ़ो पूरा संग, ओम ठीक है, अरे तो व्यवहार व्यवहार भक्ति है, ये है व्यवहार भक्ति, जय जय नाथ परम गुरु, वो झमाझम झमाझम उतकना नाचना, ये कोई भक्ति भक्ति नहीं है, हैं? वो कितना जीवों की हिंसा नीचे होती है, बोलो कहीं सौदर में नाचता था, अरे भाई साहब उसकी होड़ मत करो, उसके नाचने में एक जीव की हिंसा नहीं होती है, क्या समझ में आए ना, और वो तो जिंदगी में एक दफे, कब, जब उनका जन्म हुआ था और तुमने रोजीना का धंधा बना लिया, शांत चित्त से स्थिरता में भक्ति होगी कि उछल कूद में भक्ति होगी, ये तो काय की भी स्थिरता नहीं है, मन की भी स्थिरता नहीं है, वाणी की भी स्थिरता नहीं है, इस जिनेन्द्र भगवान की भक्ति क्यों, शांत रस है ना, तो शांत रस कैसे होगा, ये व्यवहार भक्ति है, फिर निश्चय भक्ति का बोलो है संत तुम्हारे पास, उत्तम जी बता रहे इतने दिनों से, क्या वो क्या नाम,
जिन्हें जितेंद्रिय जिद मोह और जिद क्षीण मोह, ये निश्चय भक्ति तो ये है, ये साधन अनुष्ठान से ऊपर हो रही है। हम आत्मा आत्मा में लीन हो गए हैं, वो है निश्चय भक्ति। अब वो बल्कि वो भक्ति मुक्ति का कारण है, वो भक्ति को गिन लेना, कोई झंझट नहीं है। तो इस भक्ति का तो कोई नाम ही नहीं आता, तो लेना है तो समंत भद्र के स्तोत्र पढ़ो, देवागम स्तोत्र हैं, जिनके आधार पर पूरा न्याय शास्त्र खड़ा हो गया। भक्तांबर स्तोत्र पढ़ो, जिसमें एक तीर्थंकर का नाम तक नहीं है, माँ बाप की तो छुट्टी क्या, तीर्थंकर तक का भी नाम नहीं है। उनके माँ बाप की तो कहां से छुट्टी है ना, गांव का नाम तो जाने दो, रिश्तेदारियों का नाम तो जाने दो। और हमारी जो है कुंडलपुर में जन्म लिया है, पापा पर से मोक्ष हुआ, हमारी तो यहीं से शुरू होती है। क्यों लड़ते हैं, तो कुंडलपुर पहुंच दिया, वैशाली कही है, दूसरी है, हम उसमें शुरू कर देते हैं, फिर हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। क्यों है? और फिर और आगे बढ़ेंगे, इसका ये किया, उसका वो किया, बेचारे ने कुछ नहीं किया जिंदगी भर, उस पर करने का आरोप लगाते हैं, हम मेरा भी कर, मेरा भी कहने लगते, मेरी वार अवार करे। अगर वो व्यवहार से इतना व्यवहार तो चलता है, भगवान के सामने ऐसी थोड़ी कहेंगे तुम कुछ करता नहीं है, भगवान के जाएंगे तो ऐसा कहेंगे कि तुम करता। ये बात साधारण आदमी के मुंह से नहीं निकली, बहुत बड़े आदमी के मुंह से निकली, इसलिए मेरे को दुख हो रहा है। क्या कैसे करते नहीं, क्या समझे कि भगवान के सामने ऐसा थोड़ी कहेंगे कि तू कुछ करता धरता नहीं है, उससे तो यही कहेंगे कि भगवान तू ही कर सका, तेरे भरोसे है, ऐसे ही बोलेंगे। भक्ति में तो ऐसा ही होता है दर्शन भाई, नहीं होता जैन दर्शन की भक्ति में ऐसा, मैं डंके की चोट कहता हूं। हम यही कहेंगे कि भगवान को सुना रहे कि आप करता नहीं हो, अरे भगवान हमने जो तत्व ज्ञान समझा है वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसी कोई पद्धति है भगवान को बताने की, बोलो बताओ है? ऐसी कोई भक्ति है पद्धति? हाँ है, बोलू कहाँ है? सत्तुम ने वास निर्दोष हो युक्ति शास्त्राविरोध वाक अविरोधम ये दृष्टे ते प्रसिद्धि ने न भावते। क्यों भावई कांते पदार्था नाम अभावा नाम अपन्यवाद क्या मनाद्यंतम मस्वरूपम मताबकम त्वन मतामृत बाह्या नाम सर्वथई कांत बाधी नाम आपताभिमान दग्धा नाम श्रेष्ठम दृष्टे न बाध्यते। क्या इनकार? ये कह रहे भगवान तुमने जो बात कही है वो आगमो युक्ति से सही बैठती है, और दूसरों ने जो कही है वो सही नहीं बैठती है। ओके क्या सही बैठती है बेटा बता? तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया, कुछ लोग भावई कांत मानते हैं, यदि भावई कांत मानेंगे तो अभावों का अभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभावा नाम अपन्यवाद, अभावों का अपन्नभ हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। और फिर क्या होगा? चार अभाव नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मत्स्वरूपम मताबकम अनाद्यतम सारी चीजें अनादि हो जाएंगी, सारी चीजें हो जाएगा। अरे आत्मा नहीं, ये अनादि हो जाएगा, ये अनादि हो जाएगा, ये अनादि हो जाएगा, ये मनुष्य पर्याय अनादि हो जाएगी, ये अनंत हो जाएगी। प्रागभाव नहीं मानेंगे तो अनादि हो जाएंगी, प्रध्वंसा भाव नहीं मानेंगे तो अनंत हो जाएंगी। क्यों? और अन्योन्या भाव नहीं मानेंगे तो ये अनंत गुण नहीं रहेंगे, सब मिलकर एक हो जाएंगे। और अत्यंत अभाव नहीं मानेंगे तो किसी का स्वरूप ही नहीं रहेगा, अस्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि सब निश्चर हो जाएंगे। फिर चैतन्य स्वाभाविक जीव कहां से रहेगा? वो तो पुद्गल में मिल जाएगा। तो एक भगवान से कह रहे हैं, भगवान को पता नहीं होगा है? अद्वैत एकांत पक्षे भी निष्ठो भेदो विरुद्ध थे। क्या अर्थ है इसका? कि अद्वैत एकांत पक्ष को मानेंगे तो सामने जो भेद दिखाई दे रहा है इसका विरोध हो जाएगा। पूरा न्याय शास्त्र भर दिया, जो आज न्याय शास्त्र है वो संबंध भद्र के स्तोत्रों के आधार पर है, उनने भगवान की भक्ति की तो पूरा न्याय शास्त्र उसकी दीवार पर खड़ा हो गया है? पर हम तो आगे भगवान को गालियां देते हैं, उन्हें कर्ता बताना, उन्हें दाता बताना, ये भगवान को टोटोमल जी ने लिखा ना,
उद्धार करता दया का सागर लिखा ना सातवें अध्याय में 222 पेज पे है ना, जैसे उन अन्य देवों में करते हैं ऐसे ही तू अरहंता देव को मानता है तो तुम विभारा भाषी है, लिखा कि नहीं लिखा? तो क्या है भाई, विचार सोचने की गंभीरता से बात है। आज मैं दो छंद आपको बताने के संकल्प लेके आया था, अभी तो ये गुरुदेव को पढ़ ही नहीं पाया अपन ने। देखो सुनो, पेज नंबर 304 हो गई, वो छोले कान भावना चली गई, क्या करें। वो गुरुदेव का अंतिम भाग आया था ना, उसमें से ही मेरा दिमाग घूम गया। प्रवचन में स्वामी जी के उक्त कथन से मैं आ गई ना, पेज नंबर 304 पर मिला। स्वामी जी के उक्त कथन में एक बात उभर कर सामने आती है कि ज्ञानी जीव न केवल अनुभव के काल में अपितु सदा ही निरंतर अखंड रूप से ज्ञान का अनुभव करता है। अनुभव के काल में नहीं और दूसरे काल में भी अनुभव करता है, तो अनुभव करता है तो अनुभव का काल हो गया ना, समझे ना? मैंने वो अनुभव से भिन्न अनुभव की बात कर रहे हैं, वो अलग टाइप का अनुभव है, ये अलग टाइप का अनुभव है। देखो, वह विकल्प के काल में भी विकल्प रूप नहीं होता, ऐसी मान्यता उसकी बनी रहती है। विकल्प तो होते हैं उसमें खूब, लेकिन वो विकल्प रूप नहीं होता, मैं तो निर्विकल्प स्वामी हूं। उसका झुकाव सदैव अखंड धारा रूप से ज्ञान स्वभाव की ओर ही रहता है। अब ये उपयोग में नहीं रहता, लब्धि ज्ञान में रहता है। देखो, इस बात की पुष्टि ज्ञान गोष्ठी में समागत प्रश्नोत्तर में निम्नांकित प्रश्नोत्तरों से भी होती है। सम्यक दृष्टि निर्विकल्प होता है तभी आनंद का अनुभव करता होगा, शेष काल तो प्रमाद में ही जाता होगा। देखो है? उत्तर, सम्यक दृष्टि सदा काल शुद्धता में ही वर्तता है। अरे वो नरक में डंडा खाते हुए न खाते हुए बल्कि दूसरों को मारते हुए राजा सैनिक प्रति समय अतीन्द्रिय आनंद का रस चख रहे हैं, आता ना भजन में समकृत सहित नरक को बासा, और फिर अब आता है अंदर गटा गति बाहर नरक कृत दुख भोगे पर अंतर सम रस गटा गति दिग मूरत दर्ग धारण की मुए लगत कछु अतापति। भले ही निर्विकल्प उपयोग ना हो, देखो क्लियर है, और राग में प्रवृत्ति करता हो, खाना पीना सोना अब आ गया ना सब, और पूजा भक्ति श्रवण आदि बाह्य उपयोग में राग बरतता हो तो भी उस समय शुद्धता में ही बरत रहा है, ऐसा कहने में आता है। सम्यक दृष्टि स्वरूप में जागृत हुआ है, वह तो निरंतर जागृत ही है। सोते वक्त भी लिखा है किन्ने पूज्यपाद स्वामी ने, सुप्तोपी उन्मत्तोपी मत्तोपी, बोलो क्या कह रहे। ये 14 गुण स्थान बरतता है, अतीन्द्रिय आनंद को चखता है, ज्ञान लब्धि ज्ञान में जागृत रहता है, श्रद्धा में उसका अपनापन रहता है, अनंतान बंदी कसाई के अभाव से जो शांति प्रकट हुई है वो प्रकट पर्याय में कायम रहती है, ऐसा बता रहे। सम्यक दृष्टि स्वरूप में जागृत हुआ तो वह निरंतर जागृत ही है। श्रेणिक आदि नरक में हैं, वे भी शुद्ध पने में ही बरत रहे हैं, राग में नहीं। राग आता है ऐसा नहीं, उसे जानते हैं, देखो ऐसा नहीं आया जानने में नहीं आया, किंतु उसमें बरतते नहीं है। बरतते हैं ना, ये मैं हूं ऐसी मान्यता का नाम है बरतना, उपयोग जाने का नाम नहीं है। देखो वस्तुतः बात यह है कि जिनागम में अनुभूति या आत्मानुभव की बात दो प्रकार से आती है। एक तो यह है कि जब आत्मा का उपयोग आत्मसन्मुख होता है तो वह आत्मा साक्षात अनुभव कर रहा होता है, शुद्धोपयोग की दशा में होता है तब यह कहा जाता है कि आत्मा अनुभव कर रहा है, और दूसरे सम्यक दर्शन हो जाने के बाद जब उपयोग बाहर की ओर हो, अन्य गेय में लगा हो, तब भी श्रद्धा गुण का अपनापन आत्मा में ही रहता है। चारित्र गुण में अनंतानंदी कसाई के अभाव से उत्पन्न शुद्धता परिणति में प्रकट रूप से विद्यमान रहती है, और ज्ञान गुण की लब्धि रूप ज्ञान प्रकट पर्याय में मैं आत्मा गेय उसका लब्धि रूप ज्ञान का गेय आत्मा बना रहता है। सुख गुण में अतिंद्रिय आनंद झरता रहता है। यह सब सम्मान दृष्टि ज्ञानियों को सदा ही विद्यमान रहता है। इस बात को ध्यान में रखकर यह कहा जाता है कि ज्ञानी जीव सदा ही आत्मा के स्वाद का भेदन करता रहता है, अनुभव करता रहता है। एक गुरुदेव का कोटेशन इन्वर्टेड कोमा खत्म हुआ ना, वहां खत्म हो गया, और उसके बाद ये सब मेरी टिप्पणी है। और ये इसको और विस्तार देखना हो तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, उसमें मैंने बहुत विस्तार से ये बात लिखी है जो हमारे मुखियों के ध्यान में नहीं है। कल में है ना, अकेले उस अनुभव को ही अनुभव मानते हैं और वे समझते हैं कि बाहर उपयोग आ गया तो बस भट्टी में आ गया, और बस किसी के वाक्यों को उठा कर देखो भट्टी में चलता ऐसा है, कुछ नहीं कहा भट्टी में, कोई भट्टी नहीं है विकल्प में, वो तो निर्विकल्प में ही है। काग है उसे मात्र जानता है, जो भी जितना है, ख्याल में है ना। ये उपयोग की निरंतरता है। देखो सातवें गुण स्थान वाले शुभ उपयोगी शुद्ध उपयोगी और छठवें वाले शुभ उपयोगी मुनि आज ऐसे कहे जाते हैं ना। अब प्रवचन सार का मैंने पद्यानुवाद किया भरत भाई, तो उसमें जो गाथा थी कि शुद्धोपयोगी मुनि है और शुभोपयोगी भी मुनि ऐसी थी। अब छंद के अनुरोध से मेरे में ये छप गया, शुभोपयोगी मुनि है शुद्धोपयोगी भी मुनि, सब विरोध आ गया बहुत जबरदस्त। क्या यार गलत है, ये गलत है गलत है। अब वो तो शुभोपयोगी वो तो ऐसा हीन समझ रहे कि जैसे वो मिथ्या दृष्टि से भी नीचा है, और वो ये भी जानता है कि कुंद शुद्धोपयोग में जाते थे और शुभोपयोग में भी आते थे, और जनवाणी लिखी गई वो शुभोपयोग में लिखी गई। वो कहते हैं कि यदि है वो आत्मा को देख देख के लिखी है, देख देख के नहीं लिखी है, जनवाणी देख देख के लिखी है, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण नहीं दिखे थे, असंग प्रदेश नहीं दिखे थे, उन्हें आत्मा को अनंत गुण वाला बताया है, वो आत्मा में अंदर में देख के नहीं आए थे, वे दिखते ही नहीं है क्या। तो फिर क्या कह रहे हैं, अनुभव पूर्वक लिखी है वो बात सही है। अब यहां ये कह रहे हैं कि वो जो लब्धि ज्ञान ज्ञान में एक समय को भी आत्मा गे नहीं रहे तो वो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाए। आप समझिए ना, क्या लब्धि ज्ञान है, मतलब लब्धि ज्ञान इसे लब्धि ज्ञान इसी मुफ्त में बाजार में मिलता हो। लब्धि ज्ञान प्रकट पर्याय का नाम है, माने उसको जानने रूप आत्मा को जानने रूप पर्याय प्रकट है। कहते पर को जान रहा तब कैसे जानेंगे स्व को, आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव माने एक साथ दोनों को जाने, जब इसे जाने तब उसे नहीं जाने, जब उसे जाने तब इसे नहीं जाने, ऐसा नहीं है स्वपर प्रकाशक स्वभाव का लक्षण, दोनों को नहीं। अच्छा केवली भगवान का ज्ञान स्वपर प्रकाशक है ना, वे अनंत पदार्थों को एक साथ जानते कि नहीं जानते, कि भाई उनकी बात छोड़ दिया तुम केवली की बात कर, आप नहीं बोलो ना, अपन तो एक समय में एक ही बात को जान सकते ना। आत्मा को जानेंगे तो पर को नहीं जान पाएंगे, पर को जानेंगे तो आत्मा को नहीं जान पाएंगे, तो फिर पर का जानना आत्मा के जानने का शत्रु हो गया ना। कौन किसने कहा कि हम एक समय में एक को ही जानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं जो उंगलियां कितनी है, एक साथ जान लिया आपने, तीन को तो जान लिया, एक को ही जानता है कहां से कहां रहेगा। बहुत स्थूल कथन है वो किसी नए में बैठेगा कि नहीं बैठेगा। अरे अनेक अनंत पदार्थों को एक साथ जानने का हमारा स्वभाव है। वस्तु स्थिति तो ये है कि एक द्रव्य को हम छयोषम ज्ञान वाले जानते ही नहीं है। क्या कह रहे, उल्टी कह रहा हूं मैं, क्यों, पुद्गल के परमाणु देखा तुमने आज तक, उसके लिए स्कंद देखते हो, फिर आगम में लिखा कि अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, तो आपने ऐसा अनुमान से जाना, आगम से जाना, परमाणु को हमने आगम से जाना है भाई साहब, सत्ता से हमें ना पुद्गल दिखता है, ना धर्म द्रव दिखता है, ना धर्म, ना आकाश, ना काल, ना आत्मा। प्रणमा जी ने सिद्ध किया है वहां, वो अनुभूति परोक्ष ही है कि हमारे ज्ञान ही दो हैं। उन मृत्यु असुर छड़ा हुआ मैंने कहा मृत्यु सूत्र दो ये परोक्ष, ये दो ज्ञान परोक्ष है, आद्य परोक्षम, हमारे पास ज्ञान ही परोक्ष है। तो प्रत्यक्ष जानोगे कैसे? केवल लिखाता है शास्त्र में, वो तो परोक्ष को प्रत्यक्ष बत ऐसा कहके प्रत्यक्ष लिख दिया है। समझ गए ना आप क्यों है ऐसा है? के लिए पढ़ो रसमुन चिट्ठी और गुरुदेव का पढ़ो अध्यात्म संदेश साथ में, रसमुन चिट्ठी का पढ़ो, क्या है असली बात क्या है। तो ये जो वस्तु का स्वाद है ये बहुत गजब की बात है। अब इसके बाद में एकाध छंद तो पढ़े अपन, एक दो मिनट रह गए, रहने देते हैं फिर कल पढ़ेंगे। चलो।